वेल, आस्था ने ज्यादा ना सोचते हुए दादाजी की गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर बैठ गई। वहीं अरमान ने एक नज़र भी आस्था की ओर नहीं देखा, क्योंकि आस्था का इस तरह से उसे इग्नोर करके दादाजी के साथ बैठना उसे अंदर तक तपा गया था। लेकिन उसने ये बात अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। जल्द ही गाड़ियों का काफिला मंदिर की ओर रवाना हो गया। अब आगे, वेल, 30 से 40 मिनट का सफ़र तय करने के बाद वे लोग बैंगलोर के सबसे बड़े मंदिर श्री राधा कृष्ण चंद्र मंदिर में पहुंच गए थे। ये न केवल बैंगलोर का बल्कि दुनिया के सबसे बड़े कृष्ण मंदिरों में से एक है, जो भारत के कर्नाटक राज्य के बैंगलोर में स्थित है। दोस्तों, ये इन्फो थोड़ा सा गूगल सर्च करके निकली है, आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। जैसे ही अरमान सिंघानिया की गाड़ियों का काफिला वहां रुका, जितने भी श्रद्धालु थे सभी हैरानी से उन गाड़ियों की ओर देखने लगे, क्योंकि सारी एक से एक महंगी गाड़ियां उस वक्त वहां मौजूद थीं। वहीं आस्था की नज़र जैसे ही मंदिर पर पड़ी, वो अपनी पलकें झपकना ही भूल गई, क्योंकि आस्था के गाँव में एक छोटा सा कृष्ण जी का मंदिर था, जिसमें कृष्ण भगवान जी की एक छोटी सी मूर्ति थी और वहीं पर सब लोग पूजा किया करते थे। लेकिन यहाँ इतना बड़ा और भव्य मंदिर देखने के बाद आस्था की आंखों में एक अलग ही तरह की चमक आ गई थी। वो मंदिर बड़ा ही भव्य तरीके से बना हुआ था। शुरुआत में काफ़ी सारी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ आस्था ने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर मंदिर था और उसके आसपास चारों तरफ नीले रंग का पानी दिखाई दे रहा था, जो दिखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। एक पल के लिए अरमान, ध्रुव, आकाश, सुमित और आहन वो मंदिर देखकर चहक उठे, क्योंकि आज तक वे मंदिर नहीं आए थे और आज आस्था की वजह से उन्हें इतना भव्य मंदिर देखने का मौका मिला था। वे सब मन ही मन में आस्था का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वे सभी अपनी गाड़ियों से पीठ लगाकर पहले एक तक मंदिर की ओर देखते रहे। लेकिन आस्था मंदिर देखकर तो खुश हो गई, लेकिन अब वो सीढ़ी को देखकर थोड़ा सा घबरा रही थी, क्योंकि भले ही आस्था ने कल रात अपने घुटनों पर दवाई लगा ली थी जिससे उसे आराम भी मिला था, लेकिन इतनी जल्दी उसके घाव नहीं भरे थे और इतनी सारी मंदिर की सीढ़ियां देखने के बाद आस्था थोड़ा सा परेशान हो रही थी कि वो इस सीढ़ी पर चढ़कर कैसे ऊपर मंदिर तक जा पाएगी और राधा कृष्ण जी के दर्शन कर पाएगी। दादाजी आस्था को इस तरह से कुछ सोचते हुए देखकर हैरान हो गए और प्यार से बोले, बेटा क्या बात है? आस्था बेटा, आप क्या सोच रही हो? आपके आराध्या का मंदिर यहाँ आपकी आंखों के सामने मौजूद है, तो चलिए चलकर दर्शन कर लेते हैं और आपके बहाने हम सबको भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। दादाजी मुस्कुराने लगे। अरमान दादाजी की ओर देखकर बोला, लेकिन दादाजी यहाँ इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, आप कैसे ऊपर तक चढ़ सकते हैं? मुझे लगता है कि आपको यहीं से दर्शन कर लेने चाहिए। तब दादाजी अरमान को रोकते हुए बोले, अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ तक आया हूँ तो क्या मैं कृष्ण भगवान के दर्शन भी नहीं करूँगा? ऐसा कैसे हो सकता है? दादाजी धीरे धीरे ग्रिल पकड़ते हुए सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगे। ध्रुव जाकर सुमित और आहान से बोला, यार इतनी सारी सीढ़ियाँ चलकर आखिरकार ऊपर दर्शन करने के लिए कौन जाता होगा? ध्रुव फिर से आहान से बोला, मैंने कितनी सारी हिंदी मूवीज़ में देखा है, ऐसे ही मंदिरों में खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ प्रार्थना करने के लिए आती हैं और अगर हमारा लक अच्छा रहा तो क्या पता हमें भी कोई ब्यूटीफुल खूबसूरत सी लड़की प्रार्थना करते हुए यहाँ मिल जाए। जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आहान की आंखों में चमक आ गई। आकाश और सुमित, जो कि उन दोनों की बातचीत सुन चुके थे, दोनों उनकी बातें सुनकर अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए मुस्कुरा दिए और आकाश बोला, इन लोगों को लड़कियों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ध्रुव बोला, यार ऑलरेडी मैं अब अपनी फील्ड में सेटल हो गया हूँ और जब से आस्था भाभी और अरमान भाई की शादी हुई है तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने लिए किसी ना किसी पार्टनर का इंतजाम कर लूँ। आखिरकार कब तक मैं इस तरह से लोगों की मदद लेता रहूँगा और बेकार में भाभी को नाश्ते के लिए परेशान करता रहूँगा? ध्रुव के कहने पर आकाश बोला, अरे वाह क्या लॉजिक लगाया तूने, अगर तुझे शादी ही करनी है तो इस तरह से लॉजिक क्यों लगा रहा है बेवकूफ़? अब ये मत कहना कि तू खाना बनाने वाली के लिए शादी करेगा, खाना तो तू शेफ़ के हाथ का भी बनवा कर खा सकता है यार। तब आहान बोला, अरे आकाश भैया प्लीज़ आप तो चुप ही कीजिए, पता नहीं लड़कियों के नाम से ही आपको क्या हो जाता है, कितने सारे हमसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसके बाद हमारा भी मन नहीं करता फिर हम लड़कियों के बारे में डिस्कस कर सकें। आखिरकार आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे आपकी उम्र तो अरमान भाई से भी ज़्यादा है और मैं तो कहता हूँ कि आप वक्त रहते शादी कर लीजिए, वरना कुछ दिनों में जवान लड़की भी आपको अंकल बोलना शुरू कर देगी। जैसे ही आहान ने ये कहा, ध्रुव खिलखिलाकर हंस पड़ा। वहीं सुमित आकाश की ओर तिरछी नजरों से देखने लगा और कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, क्योंकि आकाश और सुमित दोनों ही अरमान से बड़े थे। ध्रुव और आहान दोनों ही इस ग्रुप में छोटे थे, दोनों में काफी ज्यादा बनती भी थी। सुमित सोचने लगा कि अगर वो यहाँ इन दोनों के साथ रुक गया, जैसे इन्होंने आकाश की टांग खिंचाई है, ये उसकी भी टांग खींचना शुरू कर देंगे। इससे अच्छा है कि वो फटाफट से मंदिर के अंदर जाकर पहले दर्शन कर ले। ऐसा सोचकर वो फटाफट आगे बढ़ गया। ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहा है, आहान ने कहा। फिर वे तीनों भी मुस्कुराते हुए चल दिए। वहीं आस्था अब दादाजी को इस तरह से हिम्मत करते हुए देखकर भी हिम्मत की और वो भी अपने कदम बढ़ाते हुए जाने लगी। तब तक अरमान अपना एक महत्वपूर्ण फोन कॉल रिसीव करने लगा। वो केवल उन सबको ऊपर चढ़ते हुए देख रहा था, लेकिन अभी तक वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ा था। एक तो उसका मंदिर में जाने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि तब तक वो बाहर उन लोगों का इंतजार कर लेगा और अपनी फोन कॉल्स का काम खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही दादाजी थोड़ा आगे गए, उन्होंने देखा कि आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव तो उनके साथ साथ आ रहे हैं, लेकिन अरमान वहीं गाड़ी के पास खड़ा हुआ है, फोन पर बात कर रहा था। तब दादाजी के माथे पर बल पड़ गए और एक नजर उन्होंने आस्था की ओर देखा, जो अपनी टांगों में दर्द को भूलकर खुशी खुशी आंखों में चमक लिए मंदिर की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने कान्हा जी को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी और उनसे ढेर सारी शिकायतें करना चाहती थी, ढेर सारा झगड़ा करना चाहती थी। साथ ही साथ उसने जो वादे किए थे वो भी वो पूरा करना चाहती थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। वहीं दादाजी ने जब देखा कि अरमान इस तरह से नहीं आएगा, कुछ सोचकर अचानक से दादाजी अभी थोड़ा सा ही ऊपर चढ़े थे। मुश्किल से उन्होंने 25 से 30 सीढ़ियां ही पार की थी। तुरंत ही वो एक जगह बैठ गए। दादाजी को इस तरह से बैठता हुआ देखकर वे सभी हैरान हो गए और जल्दी से दादाजी के पास जमा हो गए। आस्था परेशान होते हुए बोली, दादाजी आप ठीक तो है ना? क्योंकि आस्था को उस वक्त काफी घबराहट हो रही थी। वो सोच रही थी कि उसकी वजह से बेचारे दादाजी मंदिर आए हैं और अगर यहाँ आकर उनकी तबीयत खराब हो गई तो वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। वहीं अरमान, जो कि उस वक्त फोन कॉल पर बिजी था, उसकी नजर दादाजी पर जैसे ही गई, अरमान ने उन्हें इस तरह से बैठे हुए देखा तो तुरंत घबरा गया और जल्दी से उसने अपना फोन काट कर पॉकेट में रख लिया और सभी बॉडीगार्ड्स की ओर देखकर निर्देश देने लगा, मंदिर के चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाओ और याद रखना, अगर किसी भी अनजान व्यक्ति को देखो या कोई भी आपराधिक गतिविधि देखो तो तुरंत उसे गोली मार देना, और जब तक के सब सही सलामत वापस आकर गाड़ी में नहीं बैठ जाते तब तक बास की तरह चारों तरफ अपनी नजरें गड़ाए रखना।
सिक्योरिटी को सख्त निर्देश देने के बाद अरमान जल्दी ही सीढ़ी की ओर भागने लगा और जल्दी ही दादाजी के पास पहुंच गया और पूछने लगा, दादाजी आप ठीक तो है ना? ऐसा कहकर अरमान दादाजी से उनके हालचाल लेने लगा। दादाजी बोले, बेटा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। अरमान बोला, दादाजी आप ये बेकार की जिद छोड़ दीजिए, अगर आपको प्रार्थना ही करनी है तो आप यहाँ बैठकर दूर से भी तो कर सकते हैं, क्या जरूरत है आपको ऊपर मंदिर तक जाने की? अरमान ताना कसते हुए बोला, मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग अपनी ये फालतू की डिमांड रखते ही क्यों हैं। फिर उसने गुस्से से घूरकर आस्था की ओर देखा। आस्था को अपने शरीर पर अरमान की जलती हुई नजरें महसूस हुईं और उसने जल्दी से अपनी गर्दन झुका ली। आकाश बोला, अरमान प्लीज, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम मानते हैं कि तुझे किसी तरह की प्रार्थना में, किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग विश्वास करते हैं तो उनकी भी श्रद्धा का मजाक उड़ाएगा। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, समझे तुम? आकाश, जो कि नॉर्मली अरमान के सामने चुप ही रहा करता था, आज अरमान के इस तरह के शब्दों के बोलने पर उसे बुरा लगा था, इसीलिए उसने अरमान को थोड़ा सा टोक दिया। अरमान भी हैरान हो गया था कि आखिरकार आज आकाश को क्या हो गया है जो वो उसके सामने इस तरह से बोल रहा है। लेकिन फिलहाल अरमान चुप हो गया और फिर दादाजी से कहने लगा, दादाजी अब आपका क्या इरादा है? अभी आप ऊपर जाकर प्रार्थना करेंगे या मेरे साथ चलकर गाड़ी में बैठेंगे? तब दादाजी अरमान की ओर देखकर बोले, बेटा मैं चाहता हूँ कि आप आस्था बेटी का हाथ थामकर ऊपर राधा कृष्ण के दर्शन करें और उसके बाद ही हम सब एक साथ वापस गाड़ी में जाएंगे। दादाजी की बात सुनने के बाद अरमान के माथे पर बल पड़ गए और वो गुस्से से आस्था को घूरने लगा। वहीं दादाजी के इस तरह से बोलने पर उन चारों के चेहरे पर हल्की सी ना दिखने वाली मुस्कुराहट आ गई। वे समझ चुके थे कि दादाजी ने एक बार फिर आस्था और अरमान को साथ लाने के लिए नाटक किया है, लेकिन वे अच्छी तरह से जानते थे कि अगर चारों में से किसी के भी चेहरे की मुस्कुराहट अरमान ने नोटिस कर ली तो वो अपनी ही आंखों से उन्हें यहीं जलाकर राख कर देगा। इसीलिए वे किसी तरह का रिस्क ना लेते हुए फटाफट से बोले, हाँ हाँ भाई, आप एक काम कीजिए, आप आस्था भाभी के साथ आइए, तब तक दादाजी को हम लोग लेकर चलते हैं, और वैसे भी इनके इतने हट्टे कट्टे पोते हैं, वो किस दिन काम आएंगे, और ये आहान तो देखो कितना ज्यादा बॉडी बिल्डर है।